चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेन तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं कल मैंने श्रीमद् भागवत और शास्त्रों से भक्ति के संबंध में बताया था। शुद्ध भक्ति प्रेममयी भक्ति वही है जो हम अपने सारी इंद्रियों से बिना किसी जागतक हेतु के कारण से केवल कृष्ण की सेवा में कृष्ण को प्रीति के लिए ही हो जो कृष्ण को उसके द्वारा सुख हो तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। मान लिया कि किसी ने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तव स्तुति की और उसके बदले में कुछ मांग लिया तो यह भक्ति नहीं हुई। कृष्ण की सेवा के लिए ही कृष्ण की सेवा हो, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। अपने आप उसका कल्याण हो जाएगा यह तो बात जरूर है, किंतु कृष्ण के लिए ही कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण सुखी बस, अन्य अभिलाषिता शून्य। उसमें कोई भी कृष्ण की प्रीति के अतिरिक्त कृष्ण के लिए सुखकर हो इसके अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा हृदय में न रहे, कोई भी अभिलाषा न रहे। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भी शंकर जी के मंदिर के चौकटे पर लोग चौकटे को दबाते हैं। दुआने का बताशा ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, कहते हैं कि हमारा लड़का पास हो जाए, हमारा बिजनेस जरा ठीक से चले, हे ठाकुर जी और उनको भोग लगाऊंगा। मानो भगवान को भी घूस दे करके प्रसन्न करके अपना काम हासिल करना चाहते, ये भक्ति नहीं है, भक्ति का आभास भी नहीं है। इस तरह से हम जब भक्ति का विवेचन हम प्रस्तुत करते हैं तो देखते हैं कि भक्ति के तारतम्य से भक्तों का भी तारतम्य होता है। भक्ति को हम जितने रूप में जिस रूप में पालन करते हैं उसी रूप में भक्त लोग को भी विभाग किया जा सकता है। इस तरह से जब हम भक्ति के स्तरों पर विचार करते हैं तो उसको हम पांच भागों में बांट सकते हैं उन भक्तों को। एक ज्ञानी भक्त, एक शुद्ध भक्त, एक प्रेम भक्त, एक प्रेम पर भक्त और एक प्रेमातुर भक्त। फिर से समझिए, एक ज्ञानी भक्त, दूसरा है शुद्ध भक्त, तीसरा है प्रेमी भक्त, चौथा है प्रेम पर भक्त, और पंचम है प्रेमातु भक्त। भक्ति के स्तर से इन लोगों को विभाग किया जाता है। इस पर हम क्रमशः विचार करेंगे तो आप लोगों को एक भक्ति की आइडिया हो जाएगी, भक्ति के संबंध में एक शुद्ध धारणा हो जाएगी। आप लोग विचार कर सकते हैं कि ये कौन कोटि का भक्त है, और जब विचार करने की क्षमता हृदय में आएगी तो उसी को कहते हैं मध्यमाधिकारी भक्त, नहीं तो उसके पहले कनिष्ठ भक्त। और कनिष्ठ भक्त के पहले वो भक्ति से उसका कोई संपर्क नहीं। इस चीज को हम अब स्तर से दो दिनों में, कल परसों और है, इसको संक्षेप में समझाऊंगा। जो लोग ध्यान से इस चीज को समझेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे, नहीं समझ में आने पर पूछ लेंगे, कोई कार्य नहीं है। हमारा ये उस तरह का भागवत नहीं है, बल्कि हमारा तो यह है कि आप लोग इसमें कुछ संदेह हो, नहीं समझ में आए तो उसको पूछ भी सकते हैं या पूछ भी सकती हैं। डरने और लजाने की कोई भी बात नहीं है, समझने की पूरी चेष्टा करेंगे। ये एक तरह से इष्ट गोष्ठी है, ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं फिर कोई इसमें प्रश्न ही नहीं कर सकता है, बस सुनते जाओ और सो जाओ, ऐसा इसलिए नहीं। समझो, विचार करो, उसे ग्रहण करो, ऐसा होना चाहिए। हम लोग इसके अतिरिक्त पारमार्थिक हिसाब से भक्ति का प्रचार करने पर भी हम लोग सन्यासी लोग समाज सुधारक भी हैं, समाज का सुधारने का भी काम करते हैं। समाज में यदि कुछ कुरीति प्रवेश कर जाए तो सन्यासी लोगों के लिए ये उचित है कि उस समाज का संसार करें, कुरीतियों को भी दूर करें। यहाँ आने पर मैं कुछ हमारे समाज में जो कुछ थोड़ी सी कुरीतियां आ गई है, जो मेरे देखने में आता है, आप लोगों को करता रहा हूं और इन कुरीतियों को दूर करने की चेष्टा करेंगे या करेंगे। एक होता है भेड़िया धर्षण। भेड़िया धर्षण किसको कहते हैं? यह भारत की बोली है, भेड़िया धर्षण। एक गड़ेरिया भेड़ों को चराता है, इधर भी देखते हैं भेड़ चराते हैं किंतु साथ में रह करके नहीं, वो अपना डंडा लेकर के और भेड़ों को चराता है। बीच में एक नाला आ गया और उसमें भेड़े तब कोई जा नहीं रही, पार नहीं कर रही, पानी अधिक नहीं है किंतु कोई इधर से उधर नहीं जा रहा। तो उसने क्या किया, उसमें से एक भेड़ को जबरदस्ती पकड़ करके और निष्ठुर होकर के उसको फेंक दिया उस पानी में, और वो पानी से उधर में मैं करता हुआ वो पार हो गया। अब उसको देखते ही हजारों की हजारों भेड़े एक साथ में उसको पार कर गए। ऐसे हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, एक दो आदमी जब ग्रहण करने लगा तो उसको देख करके और भी अंधे लोग जैसे उसको ग्रहण करने लगे। अब जैसे देखो राम की लीला, यहां पर हम समझते हैं कि बहुत होती है, राम लीलाएं भी होती होंगी, उसमें राम का चरित्र कितना निर्मल है, उसमें उनके भाइयों का चरित्र कितना निर्मल है। राज्य को गेंद की तरफ में फेंक रहे हैं, जिस राज्य के लिए लोग लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं। कौशल्या जी का चरित्र कितना निर्मल, सीता जी का निर्मल कितना रूप, राम का, भरत का, शत्रुघ्न जी का, एक एक चरित्र बहुत निर्मल। उन लोगों ने कभी शराब का पान किया या काबा काबा या क्या कहते हैं ना, काबा काबा का ये
जगोना
कभी लिया? ये कहां से कुरीति घुस गए। और इसकी देखा देखी हमारे हिंदू भाई भी, भारतीय लोग भी जो इस देश में हैं, और भी धीरे धीरे कबा का नशा लेने लग गए। कबा कबा ये कहां से कुरीति आई? ये कुरीति है, इसको लेकर के लोग पागल बनते हैं। एक आदमी पागल होता ऐसे ही रोग से, और ये दूसरा रोग पालने के लिए भी इसको लेते हैं। ये कहां लिखा रामायण में, महाभारत में, शास्त्रों में, गीता भागवत में कहीं लिखा है ये सब? इसलिए इसका पालन नहीं होना चाहिए। विशेष करके जो रामलीला का प्रदर्शन करते हैं उसमें पात्र बनते हैं सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, उनको तो ये सबसे बहुत दूर करना चाहिए। उनको सामाजिक लोगों को बतलाना चाहिए ये सब मत करो, ये पाप है, घर बिगड़ जाएगा, जुआ खेलने लग जाएगा, और जुआ खेलते खेलते ये करते करते उसके लड़के भी ऐसा ही होंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, रोग हो जाएंगे तरह तरह के। एक तो बात ये, दूसरी बात भगवान को ही भगवान कहो। जो मनुष्य है, जो साधारण व्यक्ति है, उसको भगवान मत मानो, किसी के कहने से भी मत मानो। आजकल दलाली चल रही, उस दलालों को पैसा दे दिया, कहा जैसे तुम लोग कहो जैसे मैं भगवान हूं, बस प्रचार करने लगे। अब उसके देखा देखी सभी लोग उसको भगवान मानने लगे। अरे भगवान तो कृष्ण है, राम है, जिनका शास्त्र में पहले से ही उल्लेख कर दिया गया, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में उनका उल्लेख है। इस समय में राम अवतरित होंगे, इस काल में कृष्ण अवतरित होंगे, इस काल में वो अवतरित होंगे, सभी अवतारों की बात शास्त्रों में लिख दी गई, किंतु मनुष्य भगवान है, साईं बाबा भगवान है, मैं खोल करके नहीं कह रहा हूं, ये काम भी शास्त्र में लिखा है। जिसका दांत टूट गया मरने के लिए प्रस्तुत है, जिसके कितने फगलता और कितने रोग हैं, और वो भगवान हो गया, दो दिन में ही मरने वाला। कृष्ण 125 वर्ष के उम्र में उनकी गोफे नहीं आई, दाढ़ी नहीं हुई, केश नहीं पके, दांत नहीं टूटे, ऐसे मालूम होते हैं अभी 16 वर्ष के किशोर लड़के। ये भगवान के सब लक्षण है। उन्होंने गोवर्धन जैसे पर्वत को उठा दिया, ये भगवान का लक्षण है। इस तरह से उन्होंने सांप के विष को हजम कर लिया, आग को खा लिया। यदि ऐसे कर सके तब तो ऐसे करने वाले भी भगवान नहीं होंगे। हनुमान तो ये कर सकते थे और किया, जिस गोवर्धन को कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पर रखा, हनुमान जी उसको लेकर के आकाश में उड़ गए, और कहां एकदम हिमालय से ले आकर के वृंदावन में उनको रख दिया। नल और ही समुद्र को बांध दिया, राम नाम कहते पत्थर रख देते ही वो तैरने लगता, इसलिए भगवान नहीं बोले, कभी लोगों ने नहीं कहा। यहां तक कि हमारे अभी कुछ दिन 5000 करीब वर्ष पहले हमारे शंकराचार्य की भी ब्रह्म ब्रह्म का उपदेश दिया, किंतु कभी भी अपने को कृष्ण और राम नहीं बतलाया, बल्कि उन्होंने उपदेश दिया भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गुरु बजे, हे गुरु गोविंद का भजन करो। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं। तो दुर्भाग्य लोग कहते हैं कि राधा साईं, राधा साईं, मतलब राधा साईं जी के साथ में राधा जी को बैठा दिया, जो हम कृष्ण राम के साथ भी सीता राधा जी को नहीं बैठाते, सीता जी को कृष्ण के साथ में नहीं बैठाते, यह रसाभास दोष होता है। और कहां साईं बाबा, मरने वाला बूढ़ा एक जगत में, एक मैस्बेरिज्म दिखा करके लोगों को भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति, और वो भगवान बनता है और उसको लोग भगवान मानते हैं, इसलिए ये समाज की कुरीतियां हैं। इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। भगवान ही भगवान है, शास्त्र में उसका उल्लेख।
हो सकता है कि जिसका उल्लेख नहीं वो भी कभी कभी भगवान उसका रूप धारण कर सकते हैं, तो उनके लक्षणों से और भक्तों के हृदय में वो जागृत होते हैं, उसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं महानुभावों की अनुभूति द्वारा। हनुमान जी यदि कहते हैं कि ये राम भगवान स्वयं है, मान लेंगे, वाल्मीकि कहेंगे, तुलसीदास कहेंगे, मान लेंगे, शंकर जी कहेंगे, हम मान लेंगे, किंतु दूसरे की नहीं। इसलिए भेड़िया दशाम की तरफ में जिस ज्योतिष को भगवान मत बोलो, भगवान मत कहो, उन लोगों को खुद ही इस सब का ज्ञान नहीं। एक बात को समझो, जीव जीवों के लिए कहीं कहीं पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, तत्त्वम असि सर्वं खलु इदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि सब बदलाया गया है, प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यादि कहा गया है, किंतु तोड़ मोड़ करके इसका कदर मत करो। तत्त्वमसि तस्य त्वमसि, तुम वही हो ऐसा नहीं, तुम उनके हो। श्रीमद् भागवत इत्यादि इसके प्रमाण है, रामायण शास्त्र उपनिषद वेद इसके प्रमाण है। कृष्ण यदि कहते हैं कि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं, किंतु साधारण जीवन होने के लिए कहे मैं ब्रह्म हूं, पर ब्रह्म हूं, यह गलत है। हम ब्रह्म के दास, इसलिए कभी कोई हम लोगों से मिलते हैं नमो नारायण कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि दासोस्मि दासोस्मि, मैं दास हूं भगवान नारायण, ये सत्कुरियां हैं, इन सबसे बच करके रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही कहो, अपनी स्त्री को मां मत कहो और मैया को अपनी पत्नी मत कहो, बेटी को बेटी कहो, यही शामिल। ऐसा नहीं स्त्री मातृ ही हमारी भार्या है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई बेटी है, कोई मैया है, कोई बहन है, जिसके साथ में जो संबंध जैसा है, इसका नाम समन्वय है, सभी एक हैं, ऐसा मत समझो। संसार में एक नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा समझो। एक और इसमें तो बुरा अच्छा हुआ, एक रहा वहां है नहीं, एक में एक कहां है, एक और ओ एन इसमें तो तीन अक्षर हो गए, एक रहा कहां का, जैसे ये लाइन खींचते हैं ये एक है, और इसमें बहुत से डॉट मिल करके तब एक रेखा बनी। यूनिवर्सिटी इन
यूनिटी इन
डाइवर्सिटी इन यू, एक में बहुत तो बहुत में, भगवान कहने से अखिल विश्व ब्रह्मांड जिनके अंदर में है वो सब मिला करके भगवान है, भगवान एक कोई वस्तु नहीं, एक नाम की कोई चीज ही नहीं है। कभी कोई इतने आदमी हैं हम लोग सभा में मिले, क्या सभी एक हैं? एक नहीं है। इसलिए बतलाया गया है उपनिषद इत्यादि सब में, नित्यो नित्याना चेतन चेतना, बहुतों के जो नियामक हैं, सृष्टा हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, वो उसको कहते हैं ब्रह्मा या भगवान। ऐसा नहीं कि वो निर्विकार निर्विशेष, बिना उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण कोई एक तत्व है, निराकार इत्यादि, ऐसा नहीं। जिसमें आकार नहीं हो सकता वो भगवान और ब्रह्म क्या होगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है ब्रह्मते ब्रह्मयते च, जो दूसरों को बढ़ाते हैं स्वयं भी वर्धित होते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकता, जो विश्व की सृष्टि कर सकता है और उसमें रूप नहीं है, तो ये सृष्टि कहां से आई, ये रूपवान आई कहां से, यदि उस कॉज में ही वो कारण में ही नहीं है। इसी को तो सत्कारण बात कहते हैं, कॉज एंड एक्शन थ्योरी, यदि उसमें रूप ही नहीं है तो ये आया कहां से,
God created man after his own image. Satyo Samya Idam Agra Ashi Inna Laha Khalaqa Min Surati. खुदा तल्ला ने अपने सूरत के समान ये जगत को बनाया, उनके कुरान शरीफ में है, और वो मानते नहीं है, जबरदस्ती करते हैं, काट तो दें तो जाए देखे जाए उसमें से। बाइबल ने भी यही लिखा, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, उन्होंने अपने समान ये बनाया मनुष्यों को। बाइबल से निकाल दे तो देखें, किंतु कहते हैं कि भगवान निराकार है, कहां से निराकार हो गया। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा, सत्यो सम्य इदम अग्र आसी। कृष्ण रूप लेकर के आते हैं निराकार है ऐसा मत समझो, राम रूप लेकर के आते हैं ऐसा नहीं, उनको लेकर के जिनका रूप नित्य है उसी को लेकर के उतरते हैं, इसलिए उनका नाम है अवतार। जो उतरते हैं उनका रूप नित्य है, करोड़ों करोड़ों बार अब तक कृष्ण का आविर्भाव हुआ, अवतार हुआ, राम का हुआ, किंतु जो रूप था वही अलग नहीं हो सकता। कृष्ण कभी भी करोड़ों करोड़ों बार उन्होंने आविर्भूत हुए इस जगत में पैदा हुए, बस बंसी दिए हाथ में, राधा जी साथ में, बस यही नव किशोर नटवर गोपवेश बेनुका, उनका यही रूप रहेगा, वो बदलेगा नहीं, इसलिए उतरने का नाम अवतार है। इसलिए भगवान निराकार है ऐसा मत करो, शास्त्र में भी बतलाया गया प्रतीकेन हिसा, वो प्रतीक है अर्थात तो रूप नहीं है, केवल प्रतीक है, प्रतिमा है केवल नहीं, न प्रतीके प्रतीक नहीं, क्या है वो सह वही है इत्यादि सब शास्त्रों में, सब वेद उपनिषद वेदांत में हमारे व्यास जी ने इसको अच्छी तरह से लिखा। शंकराचार्य ने कुछ विशेष कारण से कुछ ऐसे किए लिखे हैं, वो निराकार है, शारदानां कृतार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पना, किंतु यह बात ठीक उतरती नहीं है, शारदों के लिए नहीं, वो सिद्धों के लिए भी उनका रूप है। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय पिबिलोकयन्ति, जन श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्ति रूपी नेत्रों से सर्वदा उस भक्तों के हृदय में उस अचिंत श्याम सुंदर सच्चिदानंद मूर्ति उनकी सब समय, इसलिए इसको इस रूप में मत समझो, इसलिए ये सब कुरीतियां दूर होनी चाहिए, तब भक्ति में प्रवेश होगा, कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य होगा, तो फिर ऐसी भक्ति में हम लोग आए। अब अपने विचार पर मैं अब चल रहा, एक कीर्तन कर वो ऑस्ट्रेलियन या भक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत से और विशेष करके नारद पंचरात्र से, उपनिषदों से और विशेष करके श्रीलरूप गोस्वामी जी के भक्ति स्वामी सिंधु से जो दिया, उसका सार यही तात्पर्य है। भगवान में अत्यधिक प्रीति, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रीति हो, प्रेम हो, बिना किसी स्वार्थ के अहैतुकी हो, और भगवान में ही भक्ति। आजकल हम देखते हैं उन शब्दों का प्रचलन साधारण लौकिक समाज में भी हो रहा है, माता की भक्ति, पिता की भक्ति, सर्वोपरि देश भक्ति, गणेश भक्ति, समाज भक्ति, काली की भक्ति, तरह तरह की बात, ये सब भक्ति नहीं है, ये साधारण रूप में एक धर्म है। वर्णाश्रम धर्म में ये चीजें बतलाई गई है, ये हमारा कर्तव्य है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। माता पिता की भक्ति नहीं, माता पिता की सेवा होगी किंतु वो परम भक्ति नहीं है, वो कृष्ण में ही राम में ही हो तो वो शुद्ध भक्ति है। सर्वोपरि कृष्ण में है, कृष्ण भगवत्ता का सार है, सर्व कारण कारण है, समस्त अवतारों के भी मूल अवतारी हैं और सब बाकी अवतार हैं। यह जो हम बतला रहे हैं वो जो पंच क्या कहते हैं पंच पंच उपासना, ये पंच उपासना नहीं है, जहां पर कि भगवान का कोई रूप ही नहीं माना गया और साधका नाम के तार्थ है ब्रह्मण रूप कल्पना। उस ब्रह्म की जो हम रूप की कल्पना करते हैं उसमें हम शक्ति को मानते हैं। साधारण लोग सूर्य की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना, शंकर जी की उपासना, गणेश की, विष्णु, पंच उपासना, सभी को एक ही कहते हैं, किंतु शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया, सभी एक नहीं है। जिसके नाम की परिक्रमा करके गणेश जगत में पूजित हो रहे हैं वो गणेश और राम स्वयं एक हो जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। साधारण लोग जो नहीं समझते हैं, पंचोपासक लोग, वो समझते हैं कि ब्रह्म का तो रूप नहीं है, उनका निर्णय सभी रूप ही भगवान का ही है, इसलिए गणेश, काली, दुर्गा, ये पांच प्रधान इत्यादि विष्णु हैं, इनको मान लो, किंतु सर्वथा ये गलत है। बस वो कृष्ण भगवत्ता की परम सार हैं और जितने अवतार हैं उनसे निकले हैं, सभी एक ही हैं। पूर्ण की चांद और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तक जितने भी चांद है वो एक ही है, उसी एक ही पूर्ण चांद में हम उसको देखते हैं, कभी तृतीय, कभी चतुर्थी, कभी तृतीय, कभी पंचमी, कभी कुछ देखते हैं, है एक ही चांद। उसी प्रकार से भगवान के अवतार समूह एक ही कृष्ण ही है, उस कृष्ण में ही जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वो दिखते हैं तो उनको राम कहते हैं, भक्तों की जबकि रक्षा के लिए आते हैं उन्हीं को नृसिंह कहते हैं, उन्हीं को कुछ कहते हैं, और जितने बाकी सब लोग हैं वो भगवान के सेवक हैं, ब्रह्मा से लेकर के शंकर से लेकर के दुर्गा, काली, ये सब उनकी शक्तियां हैं। उसको उसी रूप में कृष्ण का सेवा करने से, भजन करने से सब, इसलिए भक्ति यदि कृष्ण के प्रति होती है ये सर्वोत्तम भक्ति है, इसी को हमारे शास्त्रों में सर्वत्र और विशेष करके श्रीमद् भागवत में जो वेदांत शास्त्र का की व्याख्या है, महाभारत का तात्पर्य निर्णय है, वेदांत का अर्थ है ब्रह्म अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थो निर्णय, गायत्री भाष्य रूप और वेदार्थ समूह, ऐसा नहीं है भारत, गायत्री का भाष्य है, वेदांत का ये मूल तात्पर्य है, महाभारत का उसमें गीता इत्यादि सभी है, उसका भी सार का सार है, इसलिए ये श्रीमद् भागवत सब प्रमाणों में सबसे, वेदों से भी अधिक इसकी प्रमाणता है, इसमें कृष्ण की अपनी बातें हैं, सभी एक साथ नहीं है, इसलिए इसमें कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान और बाकी उन्हीं के सब प्रकाश है। जब राम की लीला का हम वर्णन करते हैं तो हम तो यही समझते हैं हम कृष्ण की एक लीला का वर्णन कर रहे हैं, राम अलग नहीं है, कृष्ण भी राम से अलग नहीं है, इस चीजों को लेकर के चलना चाहिए। किंतु देवता लोग जितने हैं वो सब भगवान की शक्तियां हैं, जिसको जिस काम में उन्होंने नियुक्त कर दिया बस उसमें लगे। तो हमने पहले बतलाया भगवान के प्रति ही हो, कृष्ण के प्रति हो, राम के इत्यादि के प्रति हो, किंतु भगवान में ही जब वो होती है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए होगी केवल, तभी उसका नाम शुद्ध भक्ति है, उत्तमा भक्ति है। किंतु अब हम देखते हैं महाराज हरिश्चंद्र, महाराज शिवी दधीची कैसे आदर्श पुरुष हमारे भारतवर्ष में हो गए हैं। हरिश्चंद्र को देखो, अपनी बात की रक्षा करने के लिए अपना सारा राज्य दे दिया, अपनी स्त्री को बेच दिया, अपने को बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, ये क्या है? यही वर्णाश्रम धर्म है, किंतु परम धर्म नहीं है, परम धर्म नहीं है। आप लोग इस कथा को जानते हैं तभी मैं थोड़ा सा इसका तात्पर्य बतलाऊं। आप लोग जानते हैं विश्वामित्र जी को, पहले क्षत्रिय राजा थे, फिर किसी प्रकार से साधन करके विशेष करके वशिष्ठ जी की कृपा से ये ब्रह्मर्षि हुए। पहले वे राजर्षि और राजऋषि से पीछे ब्रह्मर्षि हुए, भगवान राम के उपासक हैं, कृष्ण के भी उपासक हैं। इन्होंने देखा जी हमारे सूर्य कुल में राम आएंगे, हरिश्चंद्र उसे पहले के हैं, और ये कर्मी केवल रह जाएगा, भगवत तत्व को समझा नहीं, भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए उनको रास्ते पर लाने के लिए स्वप्न में ही उनका राज्य मांग लिया, उन्होंने स्वप्न में दे दिया। सवेरा हुआ विश्वामित्र जी उनके राज दरबार में पहुंचे। महाराज कुछ याद है? क्या याद? मुझे तो कुछ याद नहीं, रात में कुछ स्वप्न देखा, अतः वो तो स्वप्न, स्वप्न तो झूठा ही होता है, ये वो झूठा नहीं था, मैं आया था राज्य मांगा, आपने राज्य दे दिया। हाँ तो बात तो ठीक है, जब ऐसी बात है तो अच्छा, तो मैंने तो राज्य आपको दे दिया तो ठीक है, अब जो राज्य दिया संकल्प करके दीजिए। तो उन्होंने संकल्प करके दिया जो राज्य दे दिया, ठीक है संकल्प जो हमने कराया इसकी दक्षिणा दीजिए। दान देने के बाद में दक्षिणा देनी होती है, गुरु से दीक्षा लेने पर दक्षिणा देनी पड़ती है, नहीं तो वो सिद्ध नहीं होती। दक्षिणा कुछ दीजिए, क्या दो दक्षिणा? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, और खजांची इनको हमारे खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दो। अरे झूठे बेईमान, जब राज्य दे दिया तो रहा था खजाना, तुम्हारा रहा खजाना तो मेरा हो गया कि नहीं, और फिर तुम उसी को दे रहे हो। तो उनका माथा ठनका, उन्होंने कहा जैसे ठीक है, जो जो देखा ये तो सबने मैंने दे दिया राज्य में, अब कहीं राज्य से तो पैसा लेकर के दे नहीं सकते। उन्होंने कहा जी अच्छा एक बात करो, राज्य तो सब दे दिया है, अपने को भी नहीं दिया है, इसलिए तुम अपने को बेच करके हमारे रुपये दे सकते, और यदि उसे भी नहीं पूरा होता तो अपनी बेटी अपनी स्त्री को और बेटे को भी बेच दो। देखा जैसे कहां मैं बेचूं, हमारे राज्य में मत बेचना। देखा कहां? उन्होंने कहा अच्छा काशी में जाओ, शंकर की पुरी है, वो मेरे अंतर्गत नहीं आती, इसे तुम्हारे राज्य में नहीं आती, वहां पर बेचो। वहां पर गए, डोम के यहां अपने को बेचा, आधा रुपया मिला 5,000, अपनी स्त्री को बेचा और 2,500 मिल गया, अपने बेटे को भी बेचा, बेच करके रुपया उनको दे दिया। अब रखवाली कर रहे हैं, एक दिन रोहिताश्व को सांप काटा, सांप नहीं काटा, विश्वामित्र जी ही सांप बन करके काट दिए और काटा, और इसके बाद में वो आधी रात में उसकी लाश को लेकर वो उनकी स्त्री तारा सभ्या, हाँ वो सभ्या मुर्दा घाटी में पहुंची संस्कार करने के लिए। उसमें हरिश्चंद्र बने हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कौन है कौन है, पहले कर दे करके संस्कार करो। तो उसके पास में कुछ तो था नहीं, वो रोने लगे। कोई भी हो, पहले कर चुका करके तब संस्कार करो। इतने में बिजली चमकी, चमकते देखा, अरे ये तो मेरी पत्नी है और ये हमारा बेटा हमारा मरा हुआ पड़ा है। हृदय थक कर गया, फिर भी बोले देखो अब तो मैं उसका अभी काम कर रहा हूं, तो उनका हमको कर देना ही होगा। वो अपना अंचल फाड़ने लगी कपड़े, जो लोग जिसको लोग। उसी समय में विश्वामित्र जी, धर्म और ये सब लोग उपस्थित हो गए। उपस्थित होकर के बोले, तुमने समझा ये किस लिए मैंने किया? संसार में देहाशक्ति सबसे बड़ी होती है और स्त्री और पुत्र के प्रति देहाभिमान होता है, ये मेरा है मेरी है। तुमको तुम्हारा शरीर बेचवा दिया तुम के यहां, तभी तुम समझता हो कि हम राजा हैं। पहले बार तुम्हारी स्त्री बिक गई किंतु समझती है, समझता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये अभिमान गया नहीं। ये शरीर का अभिमान जब तक है तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी, इसको हटाना पड़ता। अंगता और ममता ये भगवान में लगाना होगा, ये भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूं या भगवान की हूं, ये भाव लाना पड़ेगा। अभी तक उनका गया नहीं था, इसलिए परम धर्म नहीं है। धर्म तो था, इसमें कोई हर्ज नहीं। परम धर्म जो भगवत भक्ति है, उनसे कोई भी संबंध नहीं था। इसलिए विश्वामित्र जी ने कृपा करके उनको इन चीजों की कहा, जैसे अच्छा बेटा रहिताश्व जी उठो, झट जी गए, जाओ तुम पृथ्वी का राजा होगा और ये अब भगवान का भजन करने के लिए जैन देश को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ में संसार छोड़कर, अभिमान मत रखो, ये सब ये मेरा है, मैंने ले लिया है, ये मेरा राज्य है, मैं तुम्हारे बेटे को दे रहा हूं, ये तुम्हारा बेटा भी मैंने खरीद लिया है और तुमको भी और सबको, इसलिए तुम लोग मेरे बहन जाओ और भगवान में तुम लोग अब ये ममता और सब, ये सब शिक्षाएं हैं। इसलिए परम धर्म नहीं है, बड़ा सम धर्म है जो एक सोपान है भक्ति का। अभी भक्ति का भी पूर्ण रूप से सोपान नहीं है, इसको समझना है। महाराष्ट्र भी को जानते हैं, बड़े दयालु दाता थे, जो कुछ मांगने कोई जाता दे देते। एक समय इंद्र ने देखा जिसे ये तो जैसा ये कर रहे हैं हमारा स्वर्ग का राज्य ले लेगा ये, इसलिए डर के मारे कबूतर बन गए और धर्म का कबूतर बना दिया और अपने बाज बन गए और कबूतर के पीछे पीछे दौड़े बाज बनकर। वो हंसता हुआ कबूतर शिवी के गोद में बैठ गया। उन्होंने देखा जैसे ये तो शरणागत हो गया है, कहो क्या बात है। इतने में बाज रूपी इंद्र आए, बोले जे मुझे भूख लगी है, ये मेरा हार है, इसलिए मेरा हार छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पाप लग जाएगा यदि मर जाऊंगा तो। नहीं क्या मैं इसे नहीं दे सकता, भले ही मैं अपना अपने को दे दूंगा, हमें खा जाओ इसको नहीं। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए कबूतर के बराबर मांस अपना दे दीजिए हमको। तो तौला तौलने लगा उनका मांस, यहां से काट करके जंघा दिया तो देखा जे कम पड़ गया, फिर अपने पैर को पूरा काट दिया, फिर दूसरे पैर को काट दिया, उसे भी नहीं तो अपने आप उसमें बैठ गए। इतने में धर्म उपस्थित हो गए और इंद्र भी धन्य है आप। ये धर्म है साधारण लौकिक धर्म, परमर्थ धर्म, इसमें भक्ति का संबंध कहां है? अन्नाभिलाषता इस पर यदि प्रयोग करो, तुमने भगवान की कौन सी सेवा की? कुछ नहीं। इसलिए लौकिक धर्म है, इसमें धर्म का कोई गंध नहीं है। दधीची को जानते हैं, अपना हार दे दिया, जीवित रह करके भी बुरा और दही लपटवा करके गाय से चटवा करके ये दे दिया हार, तो इसका वज्र बना, देवताओं ने लिया था। ये वर्णाश्रम धर्म है, परम धर्म नहीं। भक्ति का कहां संबंध, भगवान की कौन सी सेवा की? इसलिए इसको समझिए, ये वर्णाश्रम धर्म है। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा, उनसे पूछा रहा रामानंद से, श्रद्ध और साधन बतलाओ, इस जगत में जब हम जगत में जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं साध्य। और फिर ऑब्जेक्ट को जान करके कैसे प्राप्त होगा उसको कहते हैं साधन। कृष्ण ही हमारे परम आराध्य हैं। जब यह निश्चित हो गया और गोपियों की कृष्ण के प्रति भक्ति ही सर्वोत्तम है, इससे बढ़कर के और कोई नहीं है, ये हमारा साध्य है। साधन क्या है? भक्ति, प्रेममयी भक्ति हो तब साधन होगा। साधन के साध्य तो कुछ जाना नहीं, जीवन का ऑब्जेक्ट क्या है और साधन करने लगे मतलब क्या है, कुछ नहीं जानते। जब भाव को समझ करके, जो अंतरंगाशक्ति का वह भाव है जिसको शुद्ध सत्व कहते हैं, जब वो हृदय में उपस्थित होता है तो इसको रति कहते हैं। उस रति को प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाता है अपने अंगों से, शरीर से, तन से, मन से, वचन से, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सखम, आत्मनिवेदनम, तब ये साधन है। जब तक कि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या रति भाव नहीं है, और जो साधन करते हैं भक्ति का वो भक्ति नहीं है, इसलिए वो होना चाहिए। जब भाव भक्ति में आ गए तो प्रेम के लिए जब हम साधन करते हैं तो उसको भाव भक्ति कहते हैं। ऐसे ही जो साधन कर रहे हैं, हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, उसको साधन नहीं कहेंगे। अभी हम लोगों का साधन ही आरंभ नहीं हुआ, इसलिए इस चीज को समझो, पहले भाव को समझना पड़ेगा। भाव माने श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के बाद में सब कुछ अनर्थ दूर हो जाने पर भगवान की कृपा से भक्तों के हृदय में, कौन भक्त, नित्य भगवान के जो परिकर हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा लोग, श्री राम सुभद्रा और गोपियां, इनके भावना जो कृष्ण के प्रति सेवा की वृत्ति है वही हृदय में जब आएगी तो उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। फिर उसके अंदर में तीव्र लालसा होगी साधन करने के लिए। यही भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति कहलाती है। तो जब भाव को लक्ष्य करके हम साधन करेंगे, श्रवण कीर्तन इत्यादि, अथवा पांच प्रकार की भक्ति, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा, सकल साधन श्रेष्ठ ए पंचंग, कृष्ण प्रेम जन्मा ये पांच। साधु संग, साधु संग में नाम कीर्तन, भागवत की कथा श्रवण, भागवत माने चैतन्य चरितामृत इत्यादि जितने भी भक्ति के ग्रंथ हैं वो सब आ गए, रूप गोस्वामी इत्यादि के भी ग्रंथ, और वृंदावन में वास करना, और ठाकुर जी का श्री विग्रह, राधा कृष्ण का या राम का, ये पांच अव्यर्थ अंग हैं। यदि वैष्णव अपराध न करे, थोड़े से ही दिनों में इनका किसी प्रकार से संग हो जाए, बस झट उसका प्रेमा भक्ति हो जाएगी, तत्क्षणात हो जाएगी, साथ ही साथ में हो जाएगी। इसलिए ये सब शुद्ध भक्ति की बातें हैं। तो अभी मैं बतला रहा था ये शुद्ध भक्ति है। अब एक बीच में और आता है बात, ठीक है, ध्रुव जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही नारद जी से दीक्षा लेकर के उन्होंने 6 महीने के अंदर में नारायण को प्राप्त कर लिया। ये क्या चीज है, क्या भक्ति है कि नहीं है, इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। कैन यू स्पीक अबाउट ध्रुव महाराज, कम ऑन।
Thousands of times, the rosary of my Siksha Guru. And to all my Guru Bhargava and to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. Srila Gurudev has asked me to speak a few words about Guru Maharaj and his practice of devotional service that he learned or took initiation from Srila Narada Muni. This wonderful pastime or lila of the Supreme Lord and his devotees is found in the fourth canto of Srimad Bhagavatam. And it is important to understand because it tells us something about the necessities or the requirements for attaining pure devotion. Actually, Dhruva's name itself is an indication of one of the qualities we require. The whole Srimad Bhagavatam, especially the first nine cantos, is teaching us the different qualities that we will need to develop in order to come to an understanding of pure bhakti, which is found in the tenth canto of Srimad Bhagavatam, particularly in those chapters describing the relationship of the gopis, the Vrajvasi gopis for Sri Krishna. Theirs is the highest, most pure and perfect form of love of God. So, how do we contrast this with the devotional service or practice of Dhruva Maharaj? So, first, Dhruva, what is the background of the story? Brahma created all the forms
but
of
not
the
so elaborately.
In this world, his son, one of his sons was Swayambhuva Manu, amongst many. Most of his sons were a Naishthika Brahmacharya, the four Kumaras, Narada Muni, other Vyasa Maharaj, they all remained Brahmacharya. But Swayambhuva Manu, he married Shatarupa. They also had two sons, Uttanapada and Priyabrat. So Uttanapada had two sons also, one from each of two queens, Suruchi and Suniti. So Suruchi was his favorite queen, and her son's name was Uta. And Suniti was older queen and not in favor. Her son was Dhruva. So one day, Dhruva, who was only about 5 years old, saw Uta sitting on the lap of his father on the throne. And he also, being a small boy, of course he had a Kshatriya nature, but still at this time only a small boy. He wanted also to climb on the lap of his father with his brother, stepmother. But the king was somewhat in fear of Suruchi, his wife. So she was present at that time, so he was not accepting Dhruva on his lap. And Suruchi became very proud and said, "Oh Dhruva, if you want, although you are actually born of this king, you're actually not like a real prince." So she was, in a way, very disparaging, calling him a bad name like this. That you're an illegitimate son, actually. You're not a real son. She said, "If you want to actually sit on the throne of the king, then you must worship the Supreme Personality of Godhead, Narayana. And in doing so, take birth again next time in my womb. Then you can sit on the throne of the king." So Dhruva was very hurt by these words, and he saw his father was not protesting out of fear of his wife. So immediately he ran from the palace to his mother's quarters. He was crying. He couldn't speak. He was breathing very heavily. The bottom was just like a snake that's been hit by a stick. He was breathing very heavily. So his mother, she couldn't understand what was wrong. Her attendants, who had heard all of these things, explained to her what had happened. So at that time, his mother gave Dhruva very good words. She did not know herself how she could mitigate his pain or end his suffering. She said, "Actually, your stepmother has spoken correctly. Only by worshipping the Supreme Personality of Godhead, Narayana, can all your desires be fulfilled, and I cannot fulfill them. So it is said that actually, and then she actually told Rupa that if you attain the love of Krishna, of Narayana, then this will be worth more than the love of millions of mothers like me. Millions of mothers. So, she also indicated something very important. She said, what is attained by practice of so many different processes, karma yoga, jnana yoga, all these different processes, is not possible for you. You're just a little boy. But you can do bhakti yoga. And she referred to the Lord as Vrijavatsala, one who is very affectionate to his devotees. So we cannot attract Krishna or the Lord by the strength of our minds, by the strength of our intelligence, or by doing exercises and making our body very fit in some kind of yoga practice. This will not attract Krishna. Only thing that will attract Krishna is the softness of our hearts, as Srila Gurudev has just described, is bhav bhakti. When the heart, Shuddha Shatva Visheshatma, Bhagasur Mansa Suryava, Ruchi Vishnu Chitta Vashrina, Kriyaso Bhava Uchite, that this Shuddha Sattva, or pure love of the inhabitants of Vrindavan, enters into the heart of the devotee, it softens his heart, and makes him experience Ruchi, or the eagerness to experience serving Krishna according to Krishna's pleasure, to attain a particular service of the Lord, and to give one's heart completely to the Lord. These softenings of the heart is what actually attracts the Lord. So she indicated that for a little boy like him, all other yogas are not possible, but only bhakti yoga. So then it describes, Srila Bhagavatam says, Yuga very carefully considered his mother's words. And she actually said, your stepmother has done you a great service by giving you this indication to worship Narayana. So, Dhruva, he left home and he went to the forest. Now, when Narayana, who was Trikalaya, and could understand what was going on, he came to that place in the forest and saw Dhruva, and he touched him on his head and blessed him. And he gave him some good advice. He said, listen, you're only a little boy. And at 5 years old, it's time for playing sports and so many things. You can come back later when you're older. And Dhruva, and remember, Dhruva's name means determined. Huh? Dhruva means determination. He said, thank you very much for your good instruction, but if you can't help me now to get what I want, then please go ahead and give me some good instructions how I can achieve my goal. And because I have been hurt, my Kshatriya spirit, my warrior spirit, which is in my blood, has been offended by my stepmother, I want a kingdom not only greater than my father, but greater than my grandfather, and even greater than my great-grandfather, Brahma, who controls the whole universe. So such ambition this little boy had to attain the whole, a kingdom greater than even this universe. So Narada, actually, in this way, he passed the test of the spiritual master. Sometimes the spiritual master will tell the boy, oh, yes, you can come back later. Oh, you don't have to do this or that. But he's actually just testing to see how much determined they are to get pure bhakti. So, in this way, Rupa passed the first test of the spiritual master. So, Narada gave him a mantra to chant. He gave him a diksha mantra to chant. And Dhruva was so determined that he was simply existing on some dry leaves for the first few months. Then he gave up eating. Then even he gave up drinking water. And then at the end, he even gave up drinking, breathing the air. He was in total trance of meditation on the form of Narayana within his heart. Fixed, determined. He had become so powerful and so tadatmya that his breathing actually had become one with the universal breathing. So when he stopped, all the demigods, all the forms suddenly couldn't breathe. And said, oh, what is going on? So they prayed to Narayana, who knew what was going on. And he came, he said, don't worry, I don't believe all your distress. I'm very pleased with this young boy's intense determination and his austerity. The story of Dhruva tells us that some austerity will be required from our side to attain the mercy of Krishna. So, just like the other night in Auckland, New Zealand, Srila Guru gave the example of a person who's lost in a deep, dark well. Someone can come with a rope and throw it down into the well and say, okay, grab onto the rope and I can pull you up. So both things are required. I must hold onto that rope very tightly and pull myself up while I'm also being lifted out. So Guru is like that, Krishna is like, he's sending Guru to help and they will lift us out of this material world, but we must also grab hold very strongly of their instructions. So like Dhruva Maharaj, he grabbed hold very strongly of Narada's instructions, not letting go, and in 6 months, Lord Narayana, Dhruva actually, his chance was broken, and he saw the Lord in front of him. And upon seeing the all beautiful, attractive form of the Lord, this is, of course, in his teacher as Narayana, not quite as sweet, not quite as Madhurya as the form of Krishna, but still very beautiful. Very beautiful lotus eyes, effulgence, nice yellow cloth, garlands, earrings, and a beautiful smile, so pleasing and satisfying to the heart. Dhruva was completely stunned. He fell at the Lord's feet. And then he got up, he was just a little 5-year-old boy. And he couldn't even speak. He was so stunned. And then the Lord touched him with his concha on the head. And by this touch of the Lord, immediately Dhruva had all Vedic knowledge. And he offered most beautiful prayers to the Lord. And in those prayers he regretted. Oh, here I have been praying for some golden pieces of glass. A kingdom greater than my great-grandfather Brahma. But now I'm seeing you, my Lord, and realizing how insignificant this is. So the Lord, there are many lessons to be learned from this story of Dhruva, but a very, very important one is that although he achieved the goal of seeing the Lord, and now he gave up his materialistic dream of having this kingdom, still the Lord gave him that kingdom. For something like 36,000 years, he was going to rule the pole star in this material universe. So this is a little bit of a warning to the devotees. Pure devotional service can be practiced by anyone can attempt to serve, even if they have material desires or doing it for material reason. And by association of Guru and sadhus and scriptures, one will become purified even of his original material ideas. But when we practice with a goal, we may have to get the results of that goal. So, Dhruva Maharaj, because he had some material tinge of desire, he also had to serve the Lord in the material world for so many thousands and thousands of years. He didn't get to go immediately back to Godhead, to the spiritual world, free from all the miseries of this material. Of course, his planet is very special, and he's not suffering like us. But the example is given here of Dhruva Maharaj, that one should be very focused in his determination, be prepared to sacrifice, but also be careful. Don't maintain even a little bit of material desire, because Krishna is also kind. He will also fulfill that. You don't have to experience that. Once our Srila Prabhupada, only to Leela Kavishta, Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada said, if you have even a pinch of material desire, if you want even one sweet ball, you'll have to take birth again in the material world. So let us try to practice this verse that Srila Gurudev has given us from Srila Rupa Goswami. Anabhilasita shunyam jnana pramata nagatam anukulyena krishnanu shivanam bhaktir uttama.
Thank you.
Amen.
जब भक्ति का हम जब विचार करते हैं, समस्त इंद्रियों से नैरंतर्यमयी भक्ति हो। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन पाया भगवान के मंत्रों के जप से, नारद जी की दीक्षा भी मिली, तो इन्होंने भगवान की कौन सी सेवा की ये देखना है। क्या सेवा की? सेवा तो की नहीं, उल्टे उन्होंने ही उनसे राज्य लेकर के 36,000 वर्षों तक भोग किया। उन्होंने भगवान की कौन सी सेवा की? कुछ भी नहीं। इसलिए ये शुद्ध भक्ति नहीं है, नहीं भक्ति है, इसको विचार करना है। इसलिए भक्ति नहीं हुई शुद्ध, कर्म मिश्रा भक्ति हो गई। भगवान को प्रसन्न किया किंतु तो उसका फल अपने भोगा। भक्ति ऐसी होने चाहिए भक्ति का फल भी भगवान भोगे। ये हनुमान जी सेवा करते हैं, उसके बदले में कुछ उन्होंने लिया अपने जीवन में, भगवान से मांगा? सारा जीवन भगवान की सेवा दिन रात करते हैं, ये भक्ति प्रेमयी भक्ति है। इसलिए ध्रुव जी की भक्ति ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये कर्म मिश्रा, कुछ जागतिक मिश्रा अपने लिए उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। इसलिए शुद्ध भक्ति कौन भक्त आएंगे, अब कल हम इसको विचार करेंगे। आज समय हो गया है, अब ये कीर्तन करके अभी आरती होगी, आरती के बाद में फिर हम लोग फिर कल के लिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग यदि 7 बजे आ जाए तो और अच्छा है, नहीं तो अधिक रात होने से मुझे कुछ असुविधा होती है। इसलिए आप लोग 7 बजे यदि आ जाए, थोड़ा सा कष्ट करें तो और अधिक भी सुन सकते। इसलिए कल हम शुद्ध भक्ति के जो विचार हैं उनमें प्रहलाद महाराज जी का चरित्र और अम्बरीश महाराज जी का और दूसरे दूसरे भक्तों का, हनुमान जी का हम चरित्र से बतलाएंगे कि भक्ति कैसे और कैसे किसकी है। गौ प्रेमानंदे महामंत्र।
Thus ends the class on the 6th of February 2002 in Lautoka, Fiji, in the evening. Hare Krishna.
What is the background of the story? Brahma created all the forms,
but
of
not
the
so elaborately.
In this world, his son, one of his sons, was Swayambhuva Madhava, amongst many. Most of his sons were a nice speaker brahmacharya. The four Kumaras, Narayuni, other Vyasa Maharaj, they all remained brahmacharya. But Swayambhuva Manu, he married Shatarupa. They also had two sons, Uttanapad and Priyavrat. So Uttanapad had two sons also, one from each of two queens, Suruchi and Suniti. So Suruchi was his favorite queen, and her son's name was Uttan. And Suniti was older queen and not in favor. Her son was Dhruva. So one day, Dhruva, who was only about 5 years old, saw Uttan sitting on the lap of his father on the throne. And he also, being a small boy, of course he had a Kshatriya nature, but still at this time only a small boy, he wanted also to climb on the lap of his father with his brother, stepbrother. But the king was somewhat in fear of Suruchi, his wife. So she was present at that time, so he was not accepting Dhruva on his lap. And Suruchi became very proud and said, "Oh Dhruva, if you want, although you are actually born of this king, you're actually not like a real prince." So she was in a way very disparaging, calling him a bad name like this, that you're an illegitimate son, actually. You're not a real son. She said, "If you want to actually sit on the throne of the king, then you must worship the Supreme Personality of Godhead, Narayan, and in doing so, take birth again next time in my womb. Then you can sit on the throne of the king." So Dhruva was very hurt by these words, And he saw his father was not protesting out of fear of his wife. So immediately he ran from the palace to his mother's quarters. He was crying. He couldn't speak. He was breathing very heavily. The bottom of his throat, just like a snake that's been hit by a stick. He was breathing very heavily. So his mother, she couldn't understand what was wrong. Her attendants, who had heard all these things, explained to her what had happened. So at that time, his mother gave Dhruva very good words. She did not know herself how she could mitigate his pain or end his suffering. Therefore she said, "Actually, your stepmother has spoken correctly. Only by worshipping the Supreme Personality of Godhead, Narayan, can all your desires be fulfilled. And I cannot fulfill them." So it is said that she told Dhruva that if you attain the love of Krishna, of Narayan, then this will be worth more than the love of millions of mothers like me. Millions of mothers. So she also indicated something very important. She said, what is attained by practice of so many different processes, karma yoga, jnana yoga, all these different processes, is not possible for you. You're just a little boy. But you can do bhakti yoga. And she referred to the Lord as Vrijavatsala, one who is very affectionate to his devotees. So we cannot attract Krishna or the Lord by the strength of our minds, by the strength of our intelligence, or by doing exercises and making our body very fit in some kind of yoga practice. This will not attract Krishna. Only thing that will attract Krishna is the softness of our hearts, as Srila Gurudev has just described, this bhav bhakti. When the heart, Shuddha Shatva Visheshatma, Bhagasur Mansa Suryava, Ruchi Visu Chitta Vashrina, Vidaso Bhava Uchite, that this Shuddha Sattva, or pure love of the inhabitants of Vrindavan, enters into the heart of the devotee, it softens his heart, and makes him experience ruchi, or the eagerness to experience serving Krishna according to Krishna's pleasure, to attain a particular service of the Lord, and to give one's heart completely to the Lord. These softenings of the heart is what actually attracts the Lord. So she indicated that for a little boy like him, all other yogas are not possible, but only bhakti yoga. So then it describes, Srila Bhagavatam says, Dhruva very carefully considered his mother's words. And she actually said, your stepmother has done you a great service by giving you this indication to worship Narayan. So Dhruva, he left home and he went to the forest. Now, when Narayan, who was Trikalagya, could understand what was going on, he came to that place in the forest and saw Dhruva, and he touched him on his head and blessed him. And he gave him some good advice. He said, listen, you're only a little boy. And at 5 years old, it's time for playing sports and so many things. You can come back later when you're older. And Dhruva, and remember, Dhruva's name means determined. Huh? Dhruva means determination. He said, thank you very much for your good instruction, but if you can't help me now to get what I want, then please go away and give me some good instructions how I can achieve my goal. And because I have been hurt, my Kshatriya spirit, my warrior spirit, which is in my blood, has been offended by my stepmother, I want a kingdom not only greater than my father, but greater than my grandfather, and even greater than my great-grandfather, Brahma, who controls the whole universe. So such ambition this little boy had to attain a kingdom greater than even this universe. So Narayana, actually in this way, he passed the test of the spiritual master. Sometimes the spiritual master will tell the boy, oh, yes, you can come back later. Oh, you don't have to do this or that. But he's actually just testing to see how much determined they are to get pure bhakti. So, in this way, Dhruva passed the first test of the spiritual master. So, Narayana gave him a mantra to chant. He gave him Diksha mantra to chant. And Dhruva was so determined that he was simply existing on some dry leaves for the first few months, then he gave up eating, then even he gave up drinking water, and then at the end he even gave up drinking, breathing the air. He was in total trance of meditation on the form of Narayana within his heart, fixed, determined. He had become so powerful and so tadatmya that his breathing actually had become one with the universal breathing. So when he stopped, all the demigods, all the forms suddenly couldn't breathe. And said, oh, what is going on? So they prayed to Narayana, who knew what was going on, and he came. He said, don't worry, I don't leave all your distress. I'm very pleased with this young boy's intense determination and his austerity. The story of Dhruva tells us that some austerity will be required from our side to attain the mercy of Krishna. So, just like the other night in Auckland, New Zealand, Srila Guru gave the example of a person who's lost in a deep, dark well. Someone can come with a rope and throw it down into the well and say, okay, grab onto the rope and I'll pull you up. So both things are required. I must hold onto that rope very tightly and pull myself up while I'm also being lifted out. So Guru is like that. Krishna is like, he's sending Guru to help and he will lift us out of this material world. But we must also grab hold very strongly of their instructions. So like Dhruva Maharaj, he grabbed hold very strongly of Narayana's instructions, not letting go, and in 6 months, Lord Narayana, Dhruva actually, his chest was broken, and he saw the Lord in front of him. And upon seeing the all-beautiful, attractive form of the Lord, this is, of course, in his teacher as Narayana, not quite as sweet, not quite as Madhurya as the form of Krishna, but still very beautiful. Very beautiful lotus eyes, a fullness, nice yellow cloth, bronze earrings, and a beautiful smile, so pleasing and satisfying to heart. Dhruva was completely stunned. He fell at the Lord's feet. And then he got up, he was just a little 5-year-old boy. And he couldn't even speak. He was so stunned. And then the Lord touched him with his concha on the head. And by this touch of the Lord, immediately Dhruva had all Vedic knowledge. And he offered most beautiful prayers to the Lord. And in those prayers he regretted, oh, here I have been praying for some golden pieces of glass, a kingdom greater than my great-grandfather Brahma. But now I'm seeing you, my Lord, and realizing how insignificant this is. So the Lord, there are many lessons to be learned from this story of Dhruva, but a very, very important one is that although he achieved the goal of seeing the Lord, and now he gave up his materialistic dream of having this kingdom, still the Lord gave him that kingdom. For something like 36,000 years, he was going to rule the pole star in this material universe. So this is a little bit of a warning to the devotees. Pure devotional service can be practiced by anyone, can attempt to serve, even if they have material desires or are doing it for material reason. And by association of guru and sadhus and scriptures, one will become purified even of his original material ideas. But when we practice with a goal, we may have to get the results of that goal. So Dhruva Maharaj, because he had some material tinge of desire, he also had to serve the Lord in the material world for so many thousands and thousands of years. He didn't get to go immediately back to Godhead, to the spiritual world, free from all the miseries of this material. Of course, his planet is very special, and he's not suffering like us. But the example is given here of Dhruva Maharaj, that one should be very focused in his determination, be prepared to sacrifice, but also be careful. Don't maintain even a little bit of material desire, because Krishna is also kind. He will also fulfill that. You don't have to experience that. Once our Srila Prabhupada, Omnitalila Kavishta, Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada said, if you have even a pinch of material desire, if you want even one sweet ball, you'll have to take birth again in the material world. So let us try to practice this verse that Srila Gurudev has given us from Srila Rupa Goswami. Anyabhinasita shunyam jnana pramata navritam anukulyena krishnanam shivanam bhaktir bhutama.
Thank you. जब भक्ति का हम जब विचार करते हैं, समस्त इंद्रियों से नैरंतर्यमयी भक्ति हो। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन पाया भगवान के मंत्रों के जप से, नारद जी की दीक्षा भी मिली, तो इन्होंने भगवान की कौन सी सेवा की ये देखना है। क्या सेवा की? सेवा तो की नहीं, उल्टे उन्होंने ही उनसे राज्य लेकर के 36,000 वर्षों तक भोग किया। उन्होंने भगवान की कौन सी सेवा की? कुछ भी नहीं। इसलिए ये शुद्ध भक्ति नहीं है, नहीं भक्ति है, इसको विचार करना है। इसलिए भक्ति नहीं हुई शुद्ध, कर्म मिश्रा भक्ति हो गई। भगवान को प्रसन्न किया किंतु उसका फल अपने भोगा। भक्ति ऐसी होने चाहिए भक्ति का फल भी भगवान हो गए। ये हनुमान जी सेवा करते हैं, उसके बदले में कुछ उन्होंने लिया अपने जीवन में, भगवान से मांगा। सारा जीवन भगवान की सेवा दिन रात करते हैं, ये भक्ति प्रेमयी भक्ति। इसलिए ध्रुव जी की भक्ति ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये कर्म मिश्रा, कुछ जागतिक मिश्रा अपने लिए उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। इसलिए शुद्ध भक्ति कौन भक्त आएंगे, अब कल हम इसको विचार करेंगे। आज समय हो गया है, अब ये कीर्तन करके अभी आरती होगी, आरती के बाद में फिर हम लोग फिर कल के लिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग यदि 7 बजे आ जाएं तो और अच्छा है, नहीं तो अधिक रात होने से मुझे कुछ असुविधा होती है। इसलिए आप लोग 7 बजे यदि आ जाएं, थोड़ा सा कष्ट करें तो और अधिक भी सुन सकते हैं। इसलिए कल हम शुद्ध भक्ति के जो विचार हैं उनमें प्रहलाद महाराज जी का चरित्र और अम्बरीश महाराज जी का और दूसरे दूसरे भक्तों का, हनुमान जी का हम चरित्र से बतलाएंगे कि भक्ति कैसे और कैसे किसकी है। गौर प्रेमानंदे महामंत्र।
Thus ends the class on the 6th of February 2002 in Lautoka, Fiji, in the evening. Hare Krishna.